नमस्कार भारत, आज है 5 सितंबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका, मैं हूं सुशीला सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की बैठक खत्म, आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने की शिरकत।
अपने अपने मंत्री ने ये बताया कि जो सरकार क्या कर रही है, उनकी क्या प्रोग्राम से क्या है, और ललित मोदी के व्यापम के इससे जो सरकार की छवि जो को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे उसको लेकर भी कई सुझाव खड़े हुई है।
सीटों के बंटवारे को लेकर अलग हुई सपा को मनाने के लिए जदयू और आरजेडी ने की कोशिशें तेज।
मैं नहीं समझता हूँ कि सीट का भी बात है, तो वो हम लोग के अभिभावक है, सीनियर नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी है, और इसलिए हम लोग का पूरा हक भी है और हमारी बात जारी है, बात जारी रहेगी।
वेलकम बैक हुई रिलीज, सुनेंगे फिल्म समीक्षा और होगा खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। राजधानी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। संघ के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोल ने इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं की गई है और न ही सरकार के सामने कोई एजेंडा रखा गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे जाने माने संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की मौत हो गई है। 51 वर्षीय आदेश पिछले करीब 1.5 महीने से अस्पताल में थे। 1994 में आओ प्यार करें फिल्म के संगीत से उन्होंने बतौर संगीतकार फिल्म जगत में कदम रखा। चलते चलते, बागबान, वेलकम और राजनीति फिल्मों के लिए तैयार किए गए उनके गाने बहुत लोकप्रिय हुए। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि विदेश मंत्री होने के नाते अपने निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करने पर जो विवाद हुआ उसका उन्हें दुख है, लेकिन जब एक अमरीकी टीवी नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उनसे इस बात के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। उनके विरोधियों ने इन पर इस बात का आरोप लगाया है कि असुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाला। सऊदी अरब के शाह सलमान अमरीका के दौरे पर हैं। जनवरी में शाह बनने के बाद ये उनकी अमरीका की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात के दौरान शाह सलमान ने कहा कि वे अमरीका से रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति लाने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। राष्ट्रपति महोदय, मैं एक दोस्ताना देश में आकर एक दोस्त से मिलकर बहुत खुश हूं और हम विश्व शांति के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में स्थिरता होना जरूरी है ताकि हमारे लोग समृद्ध हो सकें, और भगवान का शुक्र है हमारे देश में समृद्धि है, लेकिन हम पूरे मध्य पूर्व में समृद्धि चाहते हैं और इसलिए हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये थे शाह सलमान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि यमन में तैनात उसकी सेना के 45 जवान मारे गए हैं। संयुक्त अरब के सुरक्षा बल उस अरब गठबंधन का हिस्सा हैं जो शिया हूती विद्रोहियों से लड़ने में यमन के सरकारी बलों का समर्थन कर रहा है। अमीरात की सरकार ने कहा कि एक रॉकेट से गोला बारूद के भंडार में आग लगने से उसके जवान मारे गए। उधर बहरीन की सरकार के मुताबिक सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा की हूतियों से हिफाजत करते हुए इस गठबंधन में शामिल उसके 5 जवान मारे गए हैं। तजाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के एक उपमंत्री के नेतृत्व में बंदूकधारियों के एक समूह ने राजधानी दुशानबे में 2 इमारतों पर हमला किया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक की। राजधानी दिल्ली में 3 दिन तक चली आरएसएस की समन्वय बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में पहुंचने से पहले संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकारों से बात की और इस बात से इनकार किया कि ये बैठक सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए थी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संघ की बैठक में शामिल होकर मंत्रियों ने गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। तो वहीं दत्तात्रेय ने कहा कि जो लोग इस बैठक पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि देश के विकास के लिए कोई भी चर्चा कर सकता है। एक रिपोर्ट के साथ संदीप राय।
3 दिन तक केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ विचार मंथन के बाद शुक्रवार को आरएसएस ने साफ किया कि उसकी समन्वय बैठक मंत्रियों के अप्रेजल के लिए नहीं थी। संगठन के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा कि संघ ने सरकार को कोई एजेंडा नहीं दिया है। हालांकि सरकार के कामकाज की समीक्षा से इनकार करने वाले होसबोले ने 14 महीने के कामकाज को लेकर सरकार को नंबर जरूर दिए। होसबोले ने कहा,
14 महीने हुए हैं और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छी है और आगे बढ़ेंगे। किसी भी विषय को कहीं भी संतुष्टि ऐसे 100% हर एक को नहीं कह सकते, और जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। इतना ही हम इनपुट दे रहे थे, हम समीक्षा नहीं कर रहे थे।
होसबोले के मीडिया से रूबरू होने के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। संघ नेता के मुताबिक बैठक में अन्य विषयों के साथ देश का विकास कैसा हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो और पड़ोसियों से संबंध कैसे हों, इस बात पर चर्चा हुई। होसबोले ने पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक संबंध बेहतर करने पर जोर दिया, लेकिन जब पूछा गया कि मौजूदा हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच भाई भाई जैसे संबंध स्थापित करना कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा,
भारत में कौरव और पांडव भी भाई भाई थे, धर्म संस्थापना के लिए सब करना पड़ता है।
उधर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के हिस्सा लेने की आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करके प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक टीवी चैनल से कहा,
प्रधानमंत्री और मंत्री संविधान के तहत शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ रहती है, ये शपथ का खुला उल्लंघन है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य बड़े मंत्री, सरकार के हर निर्णय, सरकार की सोच जो निर्धारित संघ कर रहा है, उनको जाके अपना रिपोर्ट कार्ड देना, ये बताना कि वो क्या कर चुके हैं और क्या करेंगे, ये गंभीर बात है।
संघ ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसे ऐसे सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। संघ का कहना है कि उसकी बैठक विचारों के आदान प्रदान का जरिया है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के में उठे मुद्दों और उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शिरकत को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से बात की और पूछा कि इस बैठक में किस तरह के संकेत सामने आए हैं।
जनवरी महीना में इस तरह एक मीटिंग हुआ जिसमें सारे मंत्री सब गए थे, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन सारे मंत्री गए थे। उन्होंने भी उस समय ये नया सरकार आने के बाद क्या क्या काम हो रहा है और आरएसएस की तरफ से जितने जानकारी मुझे है उस समय भी उनकी की एरियाज ऑफ कंसर्न, यानी वो कुछ चीजें बिल्कुल बार बार एम्फसाइज कर रहे थे, जैसे रूरल इकोनॉमी को लेकर, गाय की प्रोटेक्शन को लेकर, और कैसे लोकल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और एजुकेशन क्षेत्र में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उस सारी चीजों को। कि आरएसएस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि सारा गवर्नेंस को लेकर कोई बड़ा एजेंडा है, उनकी की एरियाज को लेकर कंसर्न, जो कहते हैं कि कंसर्न यानी उनकी का जो लगता है कि इन चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए, तो वो बातें जनवरी में हुई थी। इस बार जो हुआ है, जो मुझे जानकारी है कि इन्होंने अपने अपने मंत्री ने ये बताया कि जो सरकार क्या कर रही है, उनकी क्या प्रोग्राम्स है, क्या है, तो इस पर उन्होंने डिस्कशन हुआ है। और ये भी बात है कि कई भाई सरकार को लेकर जो पिछले हमने देखा है जब से ये कॉन्ट्रोवर्सी सब शुरू हुई, ललित मोदी के व्यापम केस, इससे जो सरकार की छवि जो को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे उसको लेकर भी कई सुझाव, कई करेक्शन, क्या करना नहीं करना, ये सब सारे हुई है। लेकिन एक चीज इसमें हमें जो ध्यान देना है, देखिए वो परिस्थिति नहीं है जहां आरएसएस पूरा डिक्टेट कर सके जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये नहीं है कि बैठकर पूछ रहे भाई क्या किया, क्यों नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन नहीं है।
जी, जैसा आपने कहा कि ये डिक्टेट करने की स्थिति नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट तो दे ही रहे हैं।
मैंने एक चीज आप नोट कीजिए, जो सर्टिफिकेट खुद अपनी तरफ से नहीं दिए और प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले दिए, चीज नोट कीजिए आप। तो आरएसएस की जॉइंट जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले आके जब प्रेस से मिले, वो प्रधानमंत्री आने से पहले, और पत्रकार के पूछने के पर हुआ, वो खुद सो मोटो नहीं बोले। लेकिन बात ये है कि बीजेपी और आरएसएस का तो संबंध है, ये एक के बिना दूसरा नहीं है। और आने वाले चुनाव बिहार में है, अगले साल फिर 17 में यूपी में है, जहां आरएसएस की जो नेटवर्क है और साथ साथ बीजेपी की संगठन है, उसमें तो कहीं आरएसएस लोग इधर भी काम करेंगे उधर भी करेंगे, तो इनको अलग अलग ना हम देख नहीं सकते कि ये अलग है वो अलग है। ये कहते जाएंगे हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज में देखें इनका तो इंटरचेंज होता रहता है। तो बेसिकली इनके लिए एक प्रकार के एक फीडबैक भी है, क्योंकि मोदी भी चाहते हैं कि भाई फीडबैक मिल जाए।
कांग्रेस ने इस पूरी मीटिंग को लेकर बड़ी आलोचना की और कहा कि सरकार ने और मंत्रियों ने अपनी गोपनीयता की जो शपथ थी उसका उल्लंघन किया है।
हाँ, कांग्रेस तो कहता है, लेफ्ट वामपंथी ने भी कहा है, लेकिन उसका जवाब भी इन्होंने बोला है कि कांग्रेस सरकार में तो रिमोट कंट्रोल बाहर था, कांग्रेस में भी एक NAC था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, वो भी बाहर था, वो भी कोई संविधान के बाहर ही था। वो इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हमने सुना है कि उनके समय तो रिमोट कंट्रोल 10 जन पर प्रधानमंत्री नाम के लिए थे मनमोहन सिंह।
जैसे आपने कहा कि संघ आज डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आज क्या रिमोट किसके पास है, रिमोट मोदी के पास है या रिमोट संघ के पास है?
ज्यादातर मुझे लग रहा है मोदी और अमित शाह का जो जिस तरह अमित शाह पार्टी में और मोदी सरकार के हेड में और वहां संघ में मोहन भागवत, इन तीनों के बीच में एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है।
वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। बिहार में महागठबंधन से अलग हुई समाजवादी पार्टी को फिर साथ लाने के लिए जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने कोशिशें तेज कर दी हैं। जेडीयू प्रमुख शरद यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कल दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद शरद यादव ने कहा कि अगले 2-3 दिन में वो अच्छे नतीजे देंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने लखनऊ में पार्टी के गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी। यादव ने कहा था कि राज्य में सीटों के बंटवारे को लेकर प्रदेश के बड़े दलों ने सपा से सलाह नहीं की, जिससे पार्टी अपमानित महसूस कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
समाजवादी पार्टी के बिहार चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने गठजोड़ बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को मनाने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी थे। मुलायम से मुलाकात के बाद लालू यादव ने कहा,
माननीय मुलायम सिंह जी, हम लोग सबके नेता, हमको जो भी सीट उठ या जो भी कोई बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि सीट उठ का भी बात है, तो वो हम लोग के अभिभावक है। और जहाँ तक लालू यादव का सवाल है, सिर्फ हमारे अभिभावक नहीं है, सीनियर नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी है, और इसलिए हम लोग का पूरा हक भी है और हम लोग हृदय से इन बातों को चाहते हैं कि देश में समाजवादी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की सरकार बने। ये बात जारी है, बात जारी रहेगी।
समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने गुरुवार को ये आरोप लगाया था कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के वक्त उनकी पार्टी से सलाह नहीं ली गई। महागठबंधन ने समाजवादी पार्टी को 5 सीटें देने का ऐलान किया था। इनमें से 2 सीटें लालू यादव ने आरजेडी के कोटे से दी थीं। मुलायम सिंह यादव से लगातार दूसरे दिन मुलाकात करने के बाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा,
जो गठबंधन है उसे मजबूत करना है, बनाए रखना है, उसी की चर्चा आज सारे समय हुई है। उनसे हमने निवेदन किया कि आप और सब लोगों से संपर्क करके, बातचीत करके, ये जो सब लोगों को इकट्ठा करने का भाई मुलायम सिंह जी ने काम किया था, उस काम को मजबूती से आगे बढ़ाने का एक ही मौका है, वो बिहार है। और मैं सोचता हूं कि अच्छे नतीजे आपके सामने 1-2 दिन में हम देंगे।
उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चैनल से बातचीत में मुलायम सिंह यादव को सलाह दी है कि वो ऐसा कोई फैसला ना लें जिससे उनका भी नुकसान हो। महागठबंधन के नेता मुलायम सिंह यादव को मनाने की कोशिश के साथ ये भी याद दिला रहे हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और इसके लिए भी महागठबंधन की एकजुटता जरूरी है।
ये थे अमल चौधरी। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की और पूछा कि महागठबंधन की एकता भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इसके बिखराव से उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा।
ये जो महागठबंधन है ना, ये एक डूबता हुआ जहाज है और इसके पीछे कोई बिहार के विकास की अवधारणा नहीं है। बिहार के चुनाव का प्रमुख मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, NDA बिहार को आगे बढ़ाने का सपना लेके बढ़ रहे हैं। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार अपनी साख बचाने और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। ये है मौलिक विषय। तो उसमें इन लोगों के आपस के अंतर्विरोध तो रहे हैं। अब मुलायम सिंह यादव की आज तक शिकायत रही है कि लालू ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जब देवेगौड़ा बने। अब बाद में जब बुरी तरह से यूपी में वो हार गए, बिहार में लालू नीतीश लालू चले थे मोदी जी को रोकने के लिए, 1-4 पर 1-2 पर, तो अब हारे हुए हताश लोग मिल रहे हैं। तो तो ये इस तरह का जो अप्राकृतिक गठबंधन है वो कब तक चलेगा? नीतीश कुमार बात करते हैं सुशासन की, बैठ गए लालू प्रसाद जी के कंधे पर, लालू प्रसाद जी का एक बैगेज है पूरा 15 साल का। तो ये जो पूरी बातचीत है ये कवायद है अपनी साख बचाने की, और उसको कभी सामाजिक न्याय का नाम, कभी धर्मनिरपेक्षता का नाम, कभी ये जुड़ते हैं टूटते हैं। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद हो, ये 1990 की भाषा बोल रहा है। 2015 का हिंदुस्तान, 2015 का बिहार दूसरा है। इसकी भाषा है अपेक्षाओं की, आशा की, गुड गवर्नेंस की, ये मौलिक मुद्दे हैं।
ये महागठबंधन ने रविशंकर जी एक बड़ा मुद्दा ये उठाया है, बिहार के स्वाभिमान की ये लोग बात करते हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि स्वाभिमान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है बिहार के।
लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों का विश्वास लिया और अपने परिवार को आगे बढ़ाया, क्षमा करें अपने सालों को आगे बढ़ाया, क्षमा करें अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाया 7 साल जब जेल गए चारा घोटाले में, और अब बेटी और दोनों बेटों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा स्वाभिमान है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार आज उनके साथ खड़े हो गए। बिहार का मतलब क्या है? बिहार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है। और मोदी जी ने क्या कहा था कि ये इस तरह के विरोध, इस तरह की घृणा, इस तरह की नफरत की राजनीति कि अगर गुजरात के लोगों ने खुशी की बाढ़ में लोगों के लिए राहत के लिए 5 करोड़ रुपया भेजा, एक गाड़ी से सामान भेजा, तो आपने कहा वापस कर दिया, जबकि दुख में तो सभी खड़े होते हैं साथ।
रविशंकर जी, एक मेरा सवाल और है आपसे कि जिस तरह से जातिगत आधार पर विभाजित होता जा रहा है चुनाव के पहले बिहार, भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाएं वहां किस तरह से देख रही है?
देखिए, ये तर्क तो पहले भी दिया था आप लोगों ने, 2014 के लोकसभा चुनाव में दिया था, नतीजे क्या हुए? यही तो मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, जो गुड गवर्नेंस डिलीवरी की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। बिहार की 40 में 31 सीटें एनडीए जीतती है, हा? ये समझने की जरूरत है, और इस बार विधानसभा के चुनाव भी क्रांतिकारी होंगे, बड़े होंगे, ये समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री 9 साल तक तो बिहार का विजन नहीं आया था, लेकिन अगर उनकी कुबत है कि हम 2,17,000 करोड़ की योजनाएं लाएंगे 5 साल में, तो फिर पैकेज की क्या जरूरत थी आपको? और अगर पैकेज जरूरत थी आपको तो ये पैसा कहां से लाएंगे आप? तो फिर आप लुभावनी बात कर रहे हैं। ये एक मौलिक सवाल है, इसलिए आज विकास डेवलपमेंट ये बिहार की राजनीति के केंद्र में आया है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। प्रगति स्टूडियो आ चुकी है समाचार पत्र लेके। समीक्षा आज क्या कहते हैं प्रगति अखबार?
मैं आपको बता दूं कि जो सभी अखबारों में मुख्य रूप से छपी खबरें हैं उसमें हैं छात्रों के सवाल, मोदी के जवाब पहले से तय थे, जो कि शिक्षक दिवस के मौके पर मोदी जो छात्रों से मिले थे उसके बारे में लिखा है सभी अखबारों में। और सबसे बड़ी बात ये कही है जो मोदी ने कही थी कि पेरेंट्स अपनी इच्छा ना थोपें बच्चों पर। उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी एक दिन के लिए शिक्षक बने और उन्होंने बताया कि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। वन रैंक वन पेंशन को पीएम की मंजूरी मिल गई और 2-3 दिन में इस बारे में कुछ ठोस घोषणा हो सकती है। शीना बोरा हत्याकांड में शीना के चेहरे का खोपड़ी से मिलान हुआ है। आरएसएस की समन्वय बैठक, जैसे कि आपने बताया खबरों में, उसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। और नौसेना की महिला अफसरों के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको एक स्थायी कमीशन मिलना चाहिए। इसके अलावा दैनिक भास्कर में मिसाइल टेस्टिंग द्वीप को मिला कलाम का नाम, अब ओडिशा में जो व्हीलर आइलैंड है उसको कलाम आइलैंड नाम से जाना जाएगा। और 5 घंटे की बच्ची को राख में दबाया लेकिन वो बचा ली गई। मध्य प्रदेश मंदसौर में ये दर्दनाक हादसा हुआ लेकिन बच्ची बचा ली गई, इस किस्मत की बात है। दूसरा अमर उजाला में है कि कई खूबियों से लैस है फरीदाबाद शहर की मेट्रो। फरीदाबाद शहर की जो नई मेट्रो चालू हो रही है उसकी खूबियां इनमें गिनवाई गई हैं। हिंदुस्तान में खबर है कि मुलायम को लालू यादव नहीं मना सके हैं अभी तक, हालांकि काफ़ी कवायद चल रही है इस बारे में। नई दुनिया में खबर है कि डूसू दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं उसकी सूची जारी हो गई है।
समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी। और अब बात फिल्म समीक्षा की। कल अनीस बाजमी की फिल्म वेलकम बैक रिलीज हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हैं जॉन इब्राहिम, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, श्रुति हसन। और लोगों को कितनी पसंद आएगी ये फिल्म जानने के लिए वैभव दीवान ने बात की फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी से।
आओ तुझे प्यार करूं, मैं बेहिसाब करूं, दिल कम बैक रिलीज हुई है इस हफ्ते। उदय भाई और मजनू भाई की जोड़ी की वापसी हुई है कंट्रोल। उदय कंट्रोल याद है आपको, फिल्म मैं देख चुका हूँ। फिल्म में कुछ लाइट मोमेंट्स है, ओवर एवरेज ह्यूमर है, कह रहा हूँ ओवर एवरेज मतलब एवरेज से बेटर। और गाने बहुत बुरे, इतने बुरे कि मैंने नई वाली वेलकम का एक भी गाना लगाने से मना कर दिया। एक गाना मैं आपको फिर भी सुना सकता हूँ बीच बीच में, आप सुन लेना। फिल्म नम्रता जोशी जो फिल्म क्रिटिक हैं उनको कैसी लगी सुनिए, मैं उनका वेलकम करता हूँ। कैसी लगी आपको ये फिल्म?
वेलकम बैक देख के ना सबसे पहला इम्प्रेशन जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वास्तव में इट्स बैक टू वेलकम, क्योंकि कहानी की जो प्लॉट पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ती है, बहुत हद तक वेलकम की ही एक कॉपी है इस फिल्म में। अगर कोई मापदंड वेलकम बैक के लिए अगर आप रखें तो मैं वो मापदंड पुरानी वाली वेलकम रखूँगी, और उसके बनिस्बत इसमें मुझे खामियां नज़र आईं। पूरी तरह से मज़ेदार नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मतलब जो ह्यूमर है हमको ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा वो लो ह्यूमर है, वो लाउड ह्यूमर है, एक्टिंग ओवर द टॉप है, जितना कि डायलॉग डिलीवरी ओवर द टॉप है। और जो एक चीज़ है, कुछ लेवल पे कुछ जो वन लाइनर्स हैं वो जमते हैं।
अच्छा क्विकली मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा आपसे अबाउट वेलकम बैक। अच्छा फिल्म की जो कास्ट है वो बहुत लंबी है, इस पूरी कास्ट में कौन दो ऐसे एक्टर्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं और क्यों?
अनिल कपूर और नाना पाटेकर, क्योंकि अपने में एक सामंजस्य है और एक उन्होंने मस्ती में करी है वो पसंद आए हैं।
अच्छा इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह और डिंपल कपाड़िया, ये कैसे लगे आपको?
मुझे लगा वेस्ट हो गए। एक तो मुझे लगा जो नसीर का जो प्रीडिसेसर है ना फिरोज खान RDX, वो इतना फ्लैशी और फैंटास्टिक कैरेक्टर था, फैंटास्टिक जो मैं कह रही हूँ ना वो फैंटेसी वाला, तो ये उसमें उतना मज़ा नहीं आया। और दोनों इतने मजे हुए एक्टर हैं, कुछ मुझे लगा उनसे और करा जा सकता था।
जॉन इब्राहिम और श्रुति हसन, ये तो एक तरीके से फेस हैं इस फिल्म के, ये कैसे लगे?
बहुत बेकार लगे, मुझे लगा दोनों को एक्टिंग में काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है। बट कॉमेडी में ना एक अपना उसमें घुसने की ज़रूरत होती है, अपने आप को स्पॉन्टेनियसली डालने की, जमा नहीं मेरे को उन दोनों का
पेयरिंग, नहीं अच्छी लगी।
नहीं अच्छी।
अच्छा अब पिक करना आपको वेलकम या वेलकम बैक?
वेलकम एनी डे।
ठीक है तो फाइनली कितने स्टार्स दोगे आप इसको?
मैं इसको 5 में से 2 नंबर दूंगी। अगर अपने में देखें और इसके पागलपन के दायरे में देखें तो फिल्म शायद वर्क करेगी। मुझे लगता है काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रही है, क्योंकि मैंने आज सुबह देखी है दर्शकों के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मेरा मापदंड वेलकम है, उसके हिसाब से मुझे उतनी नहीं जमी फिल्म।
तो जनता बजाओ फिल्म का घंटा, फिल्म को क्लैप या फिर स्लैप, क्या मिलेगा बोलो बेटा?
क्या सट्टी भाई उदय भाई का रोल बहुत अच्छा है, मजा आ गया देखने में।
ऑसम नाना पाटेकर अनिल कपूर, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। 3.5
मुझे भी अच्छी लगी, थोड़ी बहुत अच्छी लगी, बस पुरानी वाली ज्यादा अच्छी थी। इसमें खाली स्टोरी थोड़ी सही थी, इधर उधर घुमाया गया था और कुछ नहीं।
बेटर आई से अक्षय कुमार वाज स्टिल बेटर इन परफॉर्मेंस, बट द मूवी वाज नाइस। 4.5।
वाह, कोई 3.5, कोई 3, कोई 4, 4.5 फ्री में मिले नंबर हैं। अगर इनकी सुनकर आप वेलकम बैक को देखने जाएंगे तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं तो ये फिल्म भी अपने पिछले पार्ट की तरह हर हफ्ते किसी ना किसी चैनल या केबल वाले के पास दिखेगी और आप इसको अपने टीवी पर देखेंगे मुफ्त मुफ्त मुफ्त।
वेलकम बैक की समीक्षा कर रही थी नम्रता जोशी। और अब खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले दिनों श्रीलंका को उसी की जमीन पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से मात दी। भारत के लिए ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि भारत पहला टेस्ट मैच 63 रनों से हार गया था। पूरी सीरीज में भारतीय गेंदबाज छाए रहे। आर अश्विन और अमित मिश्रा ने अपनी घूमती गेंदों से श्रीलंकाई गेंदबाजों को परेशानी में डाले रखा। आर अश्विन ने 21 और अमित मिश्रा ने 15 विकेट अपने नाम किए। अमित मिश्रा के कोच संजय भारद्वाज ने BBC से खास बातचीत में बताया कि कैसे अमित मिश्रा एक परिपक्व गेंदबाज के रूप में उभरे।
सबसे बड़ी बात है कि अमित मिश्रा शुरू से ही एक ट्रू जो लेग स्पिनर होता है, उसके पास हर तरह की वैरायटी है। वो अच्छी गुगली मारता है, बॉल टॉस करके डालता है और उसके अंदर एक करेज है कि वो बैट्समैन को इनवाइट करता है कि आओ आप मुझे अटैक करो, और जो बॉलर अटैक करवाने की सोचेगा तो उसके पास सबसे ज्यादा जिगरा होता है और सबसे ज्यादा वैरायटी होती है, वही कर सकता है। जो 18 साल का अमित मिश्रा था वही चीज अमित मिश्रा ने नहीं छोड़ी, और अमित मिश्रा को जब जब कंट्री के लिए खेलने का मौका मिला तो उसने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
वहीं भारत के कप्तान विराट कोहली के कोच पूर्व क्रिकेटर राजकुमार शर्मा ने बताया कि कैसे विराट कोहली इस बार कप्तानी करते हुए अलग दिखाई दिए।
सबसे बड़ी चिंता बॉलिंग को लेकर थी कि 20 विकेटें कौन निकालेगा, लेकिन जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से विराट कोहली ने 5 बॉलर्स खिलाए और जीतने के लिए गए, वो एक पॉजिटिव साइन है आगे फ्यूचर इंडियन क्रिकेट के लिए कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं, 20 विकेटें चाहिए हमें, हम ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था, कोशिश की कि एक चेंज किया जाए कल्चर को कि हम डिफेंसिव मोड में क्रिकेट ना खेल के एग्रेसिव मोड में पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और वो पे ऑफ किया।
वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के कोच श्रवण कुमार ने बताया कि कैसे ईशांत शर्मा ने उनसे किया गया अपना वादा पूरा किया।
प्रैक्टिस खूब किया जाने से पहले, थोड़ा सा मैच्योरिटी भी आ गई है बॉलिंग के अंदर जो जरूरी थी। जाते हुए मैंने कहा भैया 200 विकेट तो करो, एक टारगेट तो पूरा करो, कहते ठीक है जी, इस टूर पे मैं 200 कर ही दूंगा, तो वो 200 कर ली। तो उसने अच्छा किया है, और थोड़ा सा बस जवाब बाद में पूछने वाले हो मैं पहले बता दूं, जब साहब की परफॉर्मेंस हो रही होती तो एग्रेसिवनेस भी आ जाती है, इतनी नहीं आनी चाहिए थी जितनी, मतलब उसको अगर बैन लग गया एक मैच का, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और अब बात टेनिस की। इन दिनों साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन खेला जा रहा है। पुरुष एकल वर्ग में तो भारत इस बार कोई चुनौती पेश नहीं कर रहा है, लेकिन युगल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ी अपने जोड़ीदारों के साथ मिलकर दावा पेश कर रहे हैं। पिछले दिनों राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने पहले दौर की बाधा पार करते हुए दूसरे दौर में जगह बना ली है। उनके अलावा पुरुष युगल वर्ग में भारत के लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार स्पेन के फर्नांडो वर्दास को भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, तीसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे, अमेरिका के जॉन इस्नर, स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका और ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिच भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप, पांचवी वरीयता हासिल चेक गणराज्य के पेत्रा क्विटोवा, 16वीं वरीयता हासिल इटली की सारा ईरानी और बेलारूस की विक्टोरिया अजरिंका भी तीसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। और अब बात कुश्ती की। अमेरिका के लास वेगास शहर में इन दिनों दुनिया भर के पहलवान मौजूद हैं, जो सोमवार से शुरू होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपने दाव पेच दिखाएंगे। भारत भी फ्रीस्टाइल और ग्रीको रोमन में अपनी चुनौती पेश करेगा। फ्रीस्टाइल में लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त की अगुवाई में भारत के अमित कुमार, अरुण, नरसिंह यादव, नरेश कुमार और मौसम खत्री तथा सुमित अपना दावा पेश करेंगे। पिछले दिनों अर्जुन पुरस्कार पाने वाले बजरंग से भी भारत को उम्मीदें रहेंगी।
अच्छी तैयारी है हमारी, और अभी ओलंपिक पहला क्वालिफाई टूर्नामेंट है, और हम यही कोशिश करेंगे पूरी टीम कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करें और मेडल जीते।
वहीं बैंकॉक में जारी एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विकास कृष्ण 75 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि सतीश कुमार, एल देवेंद्र सिंह और शिव थापा कांस्य पदक के लिए लड़ेंगे। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
तो खेल और खिलाड़ी लाए थे आदेश कुमार गुप्त, और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। राजधानी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे जाने माने संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की मौत हो गई है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि विदेश मंत्री होने के नाते अपने निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करने पर जो विवाद हुआ उसका उन्हें दुख है। सऊदी अरब के शाह सलमान अमेरिका के दौरे पर हैं। जनवरी में शाह बनने के बाद ये उनकी अमेरिका की पहली यात्रा है। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि यमन में तैनात उसकी सेना के 45 जवान मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।